الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. امید ہے کہ اب تک سب طالبات کو اس دعا کے معنی آتے ہوں گے، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ ہم اپنی ہر کلاس سے پہلے پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ کلاسز کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو پھر مشکل ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ اور دل سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھی باتوں کے اوپر اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صرف سمجھ لینا یا جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد پھر کچھ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں. اب کچھ بیوقوفوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر جاننا ہی نہیں چاہیے، پڑھنا ہی نہیں چاہیے، سیکھنا ہی نہیں چاہیے، تاکہ نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری. تو یہ یعنی سفیہانہ سوچ ہے، بیوقوفی کی کم عقلی کی سوچ ہے کہ علم ہی حاصل نہ کرو تاکہ مصیبت ہی نہ پڑے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو جو ملی ہے تو آپ علم حاصل کر رہی ہیں. اگر اپنے آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کریں گی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے الٹا زیادہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موقع تو دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم موقعوں کو ہی روک دیں، ٹھیک ہے؟ کہ علم حاصل کرنے کا موقع ہی کسی کو نہ ملے، یہ تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ موقع تو دیں گے، اب ان موقعوں سے اگر ہم پہلو تہی کریں گے تو وہ یعنی وہ خود بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو بچنے کا یعنی ایک سیدھی سی بات ہے، آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ علم نہ حاصل کرنے کا تو آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ کہ جب ایک پیغام میرے پاس آ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور میں کہوں کہ نہیں مجھے نہیں حاصل کرنا تاکہ میرے اوپر بوجھ نہ پڑ جائے، ذمہ داری کا عمل کرنے کا بوجھ نہ پڑ جائے، یہ تو آپشن ہی نہیں نا ہمارے پاس، یہ تو اللہ کی طرف سے سسٹم ایک ہے وہ چل رہا ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ آپشن کیا ہے؟ علم حاصل کریں اور عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہی ایک آپشن ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑنی چاہیے. کلاس ہماری پچھلی کلاس میں ہم 599 پیج کے سیکنڈ لاسٹ لائن تک ہم نے پڑھ لیا تھا. تو اس کے بعد فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ لفظ توبہ کے اصلی معنی رجوع کے ہیں، گناہ سے توبہ کو بھی اسی لیے توبہ کہا جاتا ہے، تاب یتوبو توبن توبتن فہو تائبن. इसका मतलब होता है रुजू करना, यानी किसी तरफ अपनी तवज्जो को बनाना, या इसको अंग्रेजी में ना आप यू टर्न के लफ्ज से भी ताबीर कर सकते हैं। यू टर्न लेना यानी आपका जो तवज्जो है वो किसी तरफ हुई हुई है, अब वहां से आप यू टर्न लेकर के बिल्कुल ऑपोजिट सुमत में मुड़ जाएं और दूसरी तरफ अपनी तवज्जो को कर लें। इसको कहते हैं कि आपने किसी और तरफ रुजू कर लिया, तवज्जो कर ली, ठीक है, पलट गया आप, यू टर्न को पलटना कहेंगे उर्दू जुबान के अंदर। तो गुनाह से तौबा को भी इसीलिए तौबा कहा जाता है कि वो अपने पिछले जुर्म गुनाह से रुजू होता है, ठीक है, इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है तो उस वक्त उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं होती, सही है, उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं होती। अगर अल्लाह की तरफ तवज्जो होती तो वो गुनाह नहीं कर सकता था, ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ तवज्जो के साथ इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, ठीक है। अल्लाह ताला की जात ऐसी जात है ही नहीं कि आप उसको देखते हुए या उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए उसकी नाफरमानी कर सके, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप जो है वो अपने मुल्क के सदर साहब के सामने या बादशाह साहब के सामने खड़े हुए हों, ठीक है, और बादशाह साहब के सामने खड़े होकर के आप बादशाह साहब की जो है ना वो शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दें, ठीक है ना, ये आप नहीं कर सकते। उनके सामने आप ये कैसे कर सकते हैं, उनकी जो हैबत होती है, बादशाह की एक हैबत होती है ना, एक बादशाह का एक रुतबा होता है, मर्तबा होता है, तो उनके सामने आप उनकी उनके साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। हाँ, उस वक्त कर सकते हैं जब जाहिरी तौर पर तो आप उनके सामने खड़े हुए हों, लेकिन दिल में आपके कोई बादशाह की कदर ना हो, अजमत ना हो, बुजुर्गी ना हो, ठीक है, दिल में आप बादशाह को बहुत ही हकीर और कमतर समझते हो, फिर तो आप बादशाह के मुंह पर जो है ना उनको उल्टी सीधी बातें सुना सकते हैं या उनके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, वरना तो आप नहीं कर सकते ना। कि बादशाह कितनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े उनके पास अथॉरिटी है, और आप उनके सामने खड़े होकर के जो है वो उल्टा काम करना शुरू कर दें। तो मकसद कहने का ये है कि गुनाह इंसान उसी वक्त करता है जब उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं होती है, जबी गुनाह से तौबा ये अपनी तवज्जो को अल्लाह की तरफ करना कहलाता है, ठीक है, इसी वजह से इसको पलटना कहते हैं और इसको यू टर्न कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो लफ्ज फताबा अलैकुम फकरऊ इस्तेमाल हुआ है, इसकी तफसीर तो हम बाद में पढ़ेंगे। एक और बात तौबा के मुताबिक बस आपके सामने रखनी है, वो ये है कि एक मिनट जी जरा होल्ड करें, इंपॉर्टेंट कॉल है, कैसे मिनट असल में कल बात हो रही थी, जो हमारी बच्चों की क्लास होती है अंडरस्टैंडिंग कुरान फॉर यूथ वाली क्लास में, आखिर में तकरीबन ये बात हुई थी कि जब इंसान गुनाह करता है ना तो एवरी गुनाह लीड्स टू अनदर गुनाह, ठीक है, एक गुनाह करने की सज़ा जो इमीडिएटली बंदे को मिलती है वो ये होती है कि उसके लिए दूसरे गुनाह का दरवाज़ा खुल जाता है या दूसरे गुनाह का आइडिया उसको शैतान के जरिए से अल्लाह ताला पहुंचवाते हैं, ठीक है। जब दूसरे गुनाह का आइडिया पहुंचता है और वो उस गुनाह के ऊपर अमल कर लेता है, ठीक है, यानी दूसरे गुनाह पर भी अमल कर लेता है, तो फिर इसके बाद इमीडिएटली इट गेट्स फॉलोड बाय द आइडिया ऑफ द थर्ड गुनाह, तीसरे गुनाह का आइडिया आता है उसको, ठीक है, फिर वो तीसरा गुनाह भी अगर कर लेता है ना तो फिर चौथे गुनाह का आइडिया आता है, चौथे गुना के बाद पांचवा। तो इसको कहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से हमने इसको डिस्क्राइब किया आपके सामने, गुनाह का स्लिपरी स्लोप भी इसको कहते हैं, स्लिपरी स्लोप यानी गुनाह पे जब आप एक दफा चल पड़ते हैं ना तो अब आप अपने आप को इतना आसानी से संभाल नहीं सकते, बिकॉज वो स्लिप होते चले जाते हैं आप उसके ऊपर, ठीक है। इसी को हमने गुनाह की स्नोबॉल के टर्म से भी एक्सप्लेन किया है कि स्नोबॉल जो होती है शुरू में तो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ के चोटी से नीचे लुढ़कती है ना, छोटी सी बॉल होती है स्नो की बनी हुई, ठीक है, बर्फ की बनी हुई, तो वो बाकी बर्फ जो होती है वो उसके साथ मिलती जाती है, शामिल होती जाती है, हत्ता कि वो जैसे जैसे नीचे आती है तो उस स्नोबॉल का साइज बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। शुरू में उस स्नोबॉल को रोकना आसान होता है क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन जब वो बड़ी होती चली जाती है ना, अब उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता, ठीक है ना, कोई बड़े से बड़ा सूरमा उस स्नोबॉल को नहीं रोक सकता, इसलिए उसका वजन इतना ज्यादा हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो गुनाह का है। तो भाई अगर इस तरीके से गुनाह के बाद गुनाह के बाद गुनाह इंसान इसके ऊपर चल पड़े, तो फिर अब इसको रोके कैसे? ये चीज अब क्या, ये अब इसके किस्मत में लिख दिया गया है कि बस इसने जो है वो यानी यही करते रहना है, ठीक है? तो फिर इसका क्या हल है? इसका हल जो है यानी इस स्नोबॉल को रोकना या इस स्लिपरी स्लोप पर अपने आप को संभालना, ये कैसे हो सकता है? ये तौबा के जरिए से हो सकता है, ठीक है, माफी मांगने के जरिए से हो सकता है, ठीक है। तो जब तक इंसान माफी ना मांगे ना अल्लाह ताला से, तौबा ना करे, उस वक्त तक एक गुना के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और इसके जरिए से फिर, इस सिलसिले की वजह से फिर बंदे का अपने परवरदिगार के साथ जो राबता होता है ना, वो राबता जो है वो मुनकता हो जाता है। अब वो परवरदिगार से वैसे दुआएं नहीं मांग सकता, ठीक है, जैसे कि हम मांगते हैं ना, ये यानी अपने मसले मसाइल के हल के लिए जो दुआएं मांगते रहते हैं, ठीक है ना, अपने किसी और जो है वह बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि हो जाएं दुनिया के अंदर, ठीक है, हमारी जिंदगी में रूनुमा हो जाएं, और जो है वो ऐसा हो जाए वैसा, बहुत सारी चीजें हमारी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन इन तमन्नाओं को हम अल्लाह के सामने पेश नहीं कर पा रहे होते हैं। क्यों नहीं पेश कर पा रहे होते हैं? इसलिए कि अल्लाह के साथ हमारा राबता जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मुतासर हो जाता है। तो अब क्या करें, राबता दोबारा से कैसे अल्लाह ताला के साथ जोड़ें? उसको जोड़ने के लिए तौबा करनी पड़ती है, ठीक है, तौबा करके ये ताल्लुक फिर से इस्तेवार हो जाता है। तो तौबा क्या क्या चीज होती है? तौबा के लिए अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों के ऊपर माफी मांगनी होती है, तमाम गुनाहों के ऊपर, ठीक है, चाहे वो गुनाह आपको याद हो या याद ना हो, हत्ता कि जिन बातों को आप गुनाह समझते हैं उनसे भी तौबा करनी होती है, और जिनको आप गुनाह नहीं समझते ना, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि वो गुनाह थे, या आप समझते ही नहीं है कि वो गुनाह थे, उनसे भी तौबा करनी होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के सामने ना ये तौबा करने से फिर ये जो एक स्लिपरी स्लोप के ऊपर लुढ़कना इंसान का शुरू हो चुका होता है ना, ये चीज रुक जाती है, ठीक है। और इसको फिर रिवर्स भी किया जा सकता है अगर आप उस तौबा के ऊपर फिर इस्तकामत के साथ डटे भी रहें। तो ये तौबा करें कैसे? ये अल्लाह ताला से माफी मांग मांग करके, मांग मांग करके, ठीक है। एक तो हमने अक्सर ये बात करी है ना कि अल्लाह ताला के सामने कामयाबी का की जो गारंटी है वो क्या है? खशियत, ठीक है, खशियत का कामयाबी की गारंटी के तौर पर, तो मुझे आपसे, आप लोगों से पूछना चाहिए था कि क्या गारंटी होती है। तो गारंटी जो होती है वो खशियत होती है, यानी खौफ, दिल के अंदर डर, ठीक है। ये दिल के अंदर डर जो है ये कैसे पैदा हो अपने अंदर? इसके लिए पहला जीना जो है वो तौबा होता है। वो जो 10 मुकामात-ए-सुलूक की बात हुई थी ना, तो उन 10 मुकामात-ए-सुलूक में से पहला जो जो मुकाम होता है या पहला जीना होता है इस सीढ़ी का, वो तौबा होता है, सही है। तो तौबा के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तौबा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस वजह से ना चाहिए ये कि अपनी दुआओं का आगाज तौबा से करें, ठीक है। जब भी हमारे मशायख जब दुआ मांगते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ठीक है, या ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तौबा के कलिमात हैं, ठीक है। हत्ता कि हमने तो ये तक देखा कि हमारे हजरत जो हैं वो अगर किसी नए बच्चे के पैदा होने के ऊपर दुआ कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त क्या दुआ करनी चाहिए? ऐ अल्लाह इस बच्चे को नेक बना, सेहतमंद बना, और माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, और फलाना बना, ढिमकाना बना, राइट, ये दुआ होनी चाहिए ना? नहीं, उस दुआ की इब्तिदा में भी रब्बना ज़लमना अनफुसना है। भाई यहाँ पे कौन सी दुआ आप गुनाहों से तौबा कर रहे हैं? यहाँ तो बच्चे के आप खैर आफियत के लिए दुआएं मांगे, राइट, नहीं, इस दुआ की भी इब्तिदा जो है वो तौबा से कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए कि अल्लाह से आप मांगे कैसे जब तक आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक ही नहीं बना, और ये ताल्लुक जो है वो तौबा के बगैर बन नहीं सकता। तो मशायख हमें सिखला रहे होते हैं कि देखो तुम भी अपनी सारी दुआएं जो है ना वो तौबा से शुरू करो, ठीक है, इस वजह से अपने आप को अल्लाह के सामने ऐसे पेश करें कि आप अपने आप को कुछ नहीं समझते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। आप अपने आप अपने पल्ले कुछ भी नहीं समझते कि मेरे पल्ले कोई आमाल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे नाम आमाल जो है ना वो गुनाहों से भरा हुआ है, मेरा मतलब तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, या तो मैंने सिर्फ गुनाह किए हैं, या जो मैंने नेकियां की भी है ना वो भी असल में तो गुनाह ही है, मेरी नेकियां भी असल में गुनाह है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह आपके शान के बकदर तो मेरी कोई नेकी हो ही नहीं सकती, मेरी हर नेकी भी गुनाह है। इस तरीके से अपने आपको अल्लाह ताला के सामने पेश करना चाहिए। ठीक है, तो ये दुआ मांगने का एक एक तरीका है जो कि सिर्फ मशायख ही इस बात को समझते हैं और सही तरीके से समझाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक और बात ये जो कि आपके सामने दिन में आया था अभी रखने का, कि अल्लाह ताला के अपने आप को हवाले कर देना। ठीक है, अपने आप को हवाले करें अल्लाह ताला के, ये जो हम अपनी गिरफ्त को अपनी जिंदगी पर से ढीला नहीं छोड़ते, ये बात समझ में आती है सबको, अपनी गिरफ्त को ढीला छोड़ना। यानी जैसे है ना आपके हाथ में फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई को, कोई कपड़ा है, ठीक है, उस कपड़े को आपने अपनी मुट्ठी में बड़े टाइट तरीके से पकड़ा हुआ है, सही है, और साथ साथ आप जो है वो अपने किसी सहेली को कह रही हैं कि ये कपड़ा मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो आपकी सहेली ने जो है वो कपड़ा आपसे, यानी वो कपड़ा जमीन पे पड़ा हुआ था या टेबल पे रखा हुआ था, वो कपड़ा आपकी सहेली ने उठा लिया, ठीक है, अब वो सहेली जो है ना उस कपड़े को जरा फैला करके देखना चाह रही है, ठीक है, कि भाई मैं देखूं तो सही कि मेरी दोस्त ने मुझे जो गिफ्ट किया है तो वो कैसा लगता है ये कपड़ा, ठीक है, लेकिन आपने जो उस कपड़े का हिस्सा अपने 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 हाथों में पकड़ा हुआ है ना, अपनी गिरफ्त के अंदर पकड़ा हुआ है, उस गिरफ्त को आप छोड़ नहीं रही है, ठीक है, अब आपकी सहेली जो है उस कपड़े को खींचे लेकिन वो कपड़ा उसके हाथ में पूरा आए नहीं, क्योंकि उधर से तो आपने उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है ना मुंह से ये कह रही हैं कि मैं तुम्हें देखो कितना अच्छा गिफ्ट कर रही हूँ, ये कपड़ा तुम्हारा है, सही है, लेकिन जब वो उस कपड़े को अपने पास लेना चाह रही है ना तो वो उसके पास आके नहीं दे रहा, क्योंकि आप छोड़ ही नहीं रही, आप अपनी मुट्ठी को खोल ही नहीं रही, ठीक है ना, होता है ना कभी कि किसी चीज से कितना ज्यादा हमें इश्क हो जाता है, ये कभी आपने शायद किसी कॉमेडी शो में इस तरह की बात देखी होगी, ठीक है, या बच्चों के कार्टून में या इस तरह की किसी चीज में आपने ये बात देखी होगी, या खुद भी हो सकता है अपनी जिंदगी में भी देखी हो कि हम किसी को कोई चीज दे तो रहे हैं लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और फिर एक अजीब किस्म के इंसान जो है ना वो कॉमेडियंस जो होते हैं वो फिर शक्ल बना रहे होते हैं कि ले लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन बस बस अपने मुट्ठी से नहीं छोड़ना, बस मुट्ठी से नहीं छोड़ना, ठीक है, बिल्कुल यही मामला हमारा अल्लाह ताला के साथ भी है, ठीक है, कि हम अल्लाह ताला से सब कुछ मांग रहे होते हैं, सब कुछ कह रहे होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी के ऊपर जो गिरफ्त अपनी मजबूत की हुई होती है ना, हम उसको लेट गो नहीं करना चाह रहे होते, हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे होते, ठीक है, तो ये एक कॉमेडी शो से ज्यादा फिर इस दुआ की कोई हैसियत नहीं होती, बात समझ में आ रही है, फिर ये दुआ क्या होती है, ये एक कॉमेडी शो होता है, ठीक है, कि मांग भी अल्लाह से रहे हैं, अल्लाह ताला से कह चाहते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक भी कर दे, लेकिन अल्लाह के हवाले भी नहीं करना चाहते, अपनी गिरफ्त को जो है वो छोड़ना भी नहीं चाहते, ठीक है, तो इस गिरफ्त को जो है ना इसको छोड़ना पड़ेगा, राइट, अपने हाथों से ना चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, सुपुर्द करना पड़ेगा, ठीक है, लेट अल्लाह डू द जॉब, ठीक है ना, अल्लाह के हवाले करना चाहिए, अल्लाह को करने देना चाहिए कि अल्लाह ताला किस तरीके से हमारे हालात को संवारते हैं, सुधारते हैं, बस अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हालात को आप ही संवारे, आप ही पूरा का पूरा टेक चार्ज ऑफ ऑल ऑफ माई अफेयर्स, ठीक है, लेकिन ए अल्लाह मैं कमजोर हूं, बस मेरे ऊपर मुशक्कत ना डालिएगा और आजमाइशों से मुझे महफूज रखिएगा, बस मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं ना, मैं तो इतनी जो नेमतों वाली जिंदगी है, इन नेमतों वाली जिंदगी को भी जो है ना मैं सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, अगर आपने कोई आजमाइश डाल दी ना मेरे ऊपर तो मैं तो उधर ही जो है ना कोलैप्स हो जाऊंगी, ठीक है, तो अल्लाह आजमाइशों से मुझे महफूज रखिएगा, औलाद के गमों से महफूज रखिएगा, और जो है वो दूसरे जो है वो मसले मसाइल होते हैं अल्लाह उनके बगैर ही अल्लाह बस मेरी इसलाह फरमा दें, हाँ मैं अपनी गिरफ्त को ढीला करती हूँ, ठीक है, इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके लिए अगर अल्फाज चाहिए हदीस मुबारका के अल्फाज तो वो अल्फाज भी अवेलेबल हैं, राइट, अल्लाहुम्मा रहमता का अर्जु اے اللہ میں آپ کی رحمت سے ساری کی ساری امید رکھتا ہوں، اللہم رحمتا کا ارجو، ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین، ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے حوالے اتنا بھی نہ فرمائیے جتنا کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار ہوتی ہے نا، اتنا بھی آپ مجھے میرے حوالے نہ کیجیے، ٹھیک ہے، یعنی ٹیک کمپلیٹ چارج آف مائی افیئرس آف مائی لائف، پورا کا پورا جو ہے نا وہ آپ اپنے ہاتھ میں میرا معاملہ رکھ لیجئے، ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین، الى نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ، اور میرے تمام افیئرس تمام معاملات کو آپ درست فرما دیجئے، اصلح لی شانی کلہ، ٹھیک ہے، تو ایسے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پھر ہماری مدد فرمائیں گے، تو یہ ہوتی ہے توبہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور اس کے اندر کوئی دقیقہ جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر جو فتاب علیکم فقرؤ کے الفاظ ہیں، تو اس جگہ صرف رجوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم قیام اللیل کی فرضیت کا واپس لے لیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اس حکم کو واپس لے لیا، تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ اس لیے استعمال ہوا ہے، آخر میں فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن، یعنی نماز تہجد جو اب بجائے فرض کے مستحب یا سنت باقی رہ گئی ہے، اس میں جس قدر قرآن آسانی سے کوئی شخص پڑھ سکے وہ پڑھ لیا کرے، ما تیسر جو بھی تمہارے لیے آسان ہو، یسر یسر تیسیرن، کسی خاص مقدار کی تعین نہیں ہے، اس آیت سے بہت سے مسائل فقیہ نکلتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہیں، وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، تو تفصیل جو ہے وہ اس آیت سے جو مسائل کی ہیں وہ فقہ میں ہے، جو کہ آپ سے اکثر لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں کتنی تلاوت کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کس نے کرنی ہوتی ہے، کس نے نہیں کرنی ہوتی ہے، امام نے، مقتدی نے، یہ سارے سارے مسائل جو ہیں وہ اس آیت سے نکلتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اقیم الصلاة میں جمہور مفسرین کے نزدیک نماز فرض مراد ہے، یعنی نماز قائم کرو، اور یہ ظاہر ہے کہ نماز فرض پانچ ہیں جو لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی ہیں، رات کو معراج میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ بھائی جو وزٹر ہوتا ہے تو اس کو کچھ تحفہ وحفہ دے کر کے واپس بھیجتے ہیں، تو 50 نمازیں لے کر کے واپس بھیجا، پھر موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے محب تھے، محبت کرنے والے تھے، لیکن کبھی اللہ کو دیکھ نہیں سکے تھے، تو انہوں نے ماشاء اللہ ہمارے مشائخ نے پھر بیان فرمایا اس کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا چلو میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا، لیکن جس نے اللہ کو دیکھا ہے اسی کو بار بار دیکھوں، ابھی ایک دفعہ یہ گزر جائیں گے تو پھر تو ان کو دیکھنے کا موقع ہی دوبارہ نہیں ملے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ترکیب سوجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی واپس جائیں اور 50 کو کم کروائیں، آپ کی عمر 50 نہیں پڑ سکتی، میری سے تو 2 نہیں پڑی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چکر لگائے ہیں، 9 چکر تقریباً، رائٹ، 9 چکر کے بعد پھر وہ 50 سے کم ہو کر کے 5 رہ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ تو معراج کی رات کی تفصیل ہے، انشاءاللہ یاد دلائے گا کلاس کے بعد تو آپ کو بھیج دیں گے یہ دعا بھی انشاءاللہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کی فرضیت جو ایک سال تک جاری رہی تھی، اسی عرصے میں لیلۃ الاسراء کا واقعہ پیش آیا جس میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اب یہاں پر اگر آپ غور سے اس عبارت کو پڑھیں تو تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی لیلۃ المعراج تو ہم نے سن رکھا ہے کہ 10 نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی تھی، 10 نبوی میں ہوئی تھی یا کسی اور اس سے پہلے ہوئی تھی، بہرحال یہ تھوڑا سا بات کا واقعہ ہے نا، تو یہ ایک سال تک تہجد کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر رہی تھی، تو اس ایک سال کے اندر ہی یہ لیلۃ المعراج ہو گئی تھی نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی، سوال ہوتا ہے لیلۃ قیام اللیل کی فرضیت جو ایک سال تک جاری رہی، اسی عرصے میں لیلۃ الاسراء کا واقعہ پیش آیا جس میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور اس کے بعد آیات مذکورہ کے ذریعے نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور آخر صورت میں جو اقامت الصلاح کا حکم آیا ہے اس سے مراد 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی اقیم الصلاح کا جو حکم آ رہا ہے نا اس آیت میں جو کہ آخری آیت ہے اس صورت کی، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ 5 فرض نماز ہیں، اب یہ تہجد کی فرضیت کی بات نہیں ہو رہی، تو तो इससे पता लगता है कि जो सूरह मुज़म्मिल है ये बिल्कुल इब्तदाई सूरत नहीं है, बल्कि ये कुछ अरसा गुजरने के बाद आप के ऊपर नाजिल हुई थी। तो बिल्कुल इब्तदाई सूरतें जो है ना वो सूरह कदर तो पहली पांच आयात जो सूरह कदर की थी, इन सॉरी सूरह कदर नहीं, सूरह इकरा बिस्म रब्बिक लजी खलक वाली सूरह अलक की पहली पांच आयतें, ये तो पहली वही थी। फिर उसके बाद फितरत वही का जो जमाना गुजरा 2.5 साल का, तो उसके बाद जो है वो या अय्युहल मुद्दसिर वाली आयत नाजिल हुई। ठीक है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा तो उससे भी एक हैबत तारी हो गई, तो आपसे सामने उसके बाद भी फिर जो है वो कंबल को ओढ़ लिया, तो या अय्युहल मुद्दसिर ए कंबल को ओढ़ने वाले वाली आयत नाजिल हुई। और या अय्युहल मुजम्मिल जो है वो उसके भी बाद में नाजिल हुई है, यानी जब तक कुछ और कुरान जो है वो आपके ऊपर नाजिल हो चुका था तो उस कुरान को तहज्जुद के अंदर पढ़ने की का हुक्म आया, और उस हुक्म को अल्लाह ताला ने 1 साल तक फर्ज के दर्जे में रखा, और उसके बाद फिर ये मिराज वाला वाक़ पेश आ गया, और मिराज वाक़ वाले वाक़े के बाद फिर तहज्जुद की फर्जियत मनसूख और पांच नमाजों की फर्जियत फिर कायम हो गई। इसी तरह आतुज़्ज़का, इसमें भी ज़कात से ज़कात फ़र्ज़ मुराद है, मगर मशहूर ये है कि ज़कात बाद हिजरत दूसरे साल में फ़र्ज़ हुई। ठीक है, यानी यहाँ मशहूर से मुराद अवामुन नास में मशहूर नहीं, बल्कि सहाबा कराम उलमाए कराम में क्या बात कन्फर्म है या क्या बात ऑथेंटिक है कि दूसरी हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। और ये वाली आयत तो मक्की आयत है, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल बहरहाल मक्का मुकर्रमा में ही नाजिल हुई, ये तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है। इब्तदाई इस्लाम में नाजिल हुई है, इसलिए बाज़ मुफस्सरीन ने खास इस आयत को मदनी कहा। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि पूरी सूरत एक जगह पर नाजिल हुई है लेकिन उसकी एक आयत या दो आयतें किसी दूसरी जगह पर नाजिल हुई है। ठीक है, तो ये वजह बनी कुछ मुफस्सरीन के इस आयत को मदनी कहने की। मगर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़कात तो मक्का मुकर्रमा में अवायल इस्लाम ही में नाजिल में ही फ़र्ज हो गई थी, में ही में फ़र्ज हो गई हो मगर उसके निसाब और मकदार वाजिब की तफसीलात मदीना तैयबा में हिजरत के दूसरे साल में बयान की गई। इस तरह आयत के मक्की होने की सूरत में भी उसको ज़कात फ़र्ज पर महमूल किया जा सकता है। ठीक है, यानी ज़कात फ़र्ज हो गई थी पहले ही, लेकिन कितनी ये नहीं था, बल्कि जितना भी आपके लिए मुमकिन हो, इस तरह से मुसलमान दे दिया करते होंगे अपने हिसाब से, या ज़्यादा ही देते होंगे। उस जमाने के जो मुसलमान थे वो तो ज़्यादा ईमान के मजबूत मुसलमान थे, लेकिन जो निसाब है वो फिर 2 हिजरी के अंदर ही फर्ज हुआ। इस तरह आयत के मक्की होने की सूरत में भी उसको ज़कात फ़र्ज पर मामूल किया जा सकता है। रूहुल मानी में भी इसी को तैयार किया है, और इसकी पूरी तहकीक अहकर के रिसाला निज़ाम ज़कात में तफसील से आई है। ठीक है, तो वो कितना निसाब है और कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये सारी किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सारी तफसील जो है वो अलग डिस्कशन है। अच्छा, वह अकरज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कर्ज दो अल्लाह को एक एहसन कर्ज, हसीन कर्ज, इसका क्या मतलब है? फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करने को इस उन्वान से ताबीर किया है कि गोया ये खर्च करने वाला अल्लाह को कर्ज दे रहा है। इसमें इसके हाल पर लुत्फ व करम की तरफ इशारा भी है, और इसका बयान भी कि अल्लाह ताला गनीयुल अगनिया है, उसको दिया हुआ कर्ज कभी मारा नहीं जा सकता। ठीक है, इतना तो एक ईमान वाले को पता होता है ना कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कि वो कर्ज ले करके जो है वो लौटाए ना, ये तो हो नहीं सकता। अल्लाह ताला किसी का कर्ज मार नहीं सकते, तो जो अल्लाह ताला को दिया है तो वो तो ज़रूर वसूल होगा, यानी उसका रिटर्न तो 100% होगा। और चूंकि ज़कात फ़र्ज़ का हुक्म इससे पहले आ चुका है, इसलिए अक़रबुल्लाह में जिस खैरात और फी सबीलिल्लाह खर्च करने का जिक्र है उसको अक्सर हजरात ने सदक़ात नाफिला और तबर्रुआत पर महमूल किया है। तबर्रो कहते हैं नेकी के कामों को, ठीक है, तो जो आप नफली काम करते हैं ना फर्ज के अलावा, तो यहाँ पे अकरबुल्लाह से वो एडिशनल एक्स्ट्रा काम है, जैसे कि हम नाफिला की तहकीक इसी क्लास के अंदर पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये एक तफसीर है अकरबुल्लाह की कि इस्तिमरार जो है ना वो सदकात नाफिला और तबर्रुआत है, जैसे अपने अकारिब व अज़ा को कुछ देना, अजीज़ व अकारिब जो इनको हम कहते हैं उनको कुछ देना, हदिया तोहफा या मेहमान की मेहमानी पर खर्च करना, ये भी नेकी का काम है कि मेहमान को जो भी इंसान खिलाता पिलाता है। तो अगर बस बात यही है सारी की सारी कि अगर हम इन चीज़ों के अंदर ना नियत कर लें, ठीक है, कि मैं मेहमान की जो मेहमान नवाजी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ, ठीक है, आखिरत की जजा और अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ, तो मेहमानी भी इबादत बन जाती है, ठीक है। हालांकि आप मेहमान के साथ बैठते हैं और अक्सर आप मेहमान के साथ एंजॉय भी कर लेते हैं, कुछ मेहमान होते हैं जिनके साथ आप एंजॉय नहीं कर रहे होते, बस उनको आप टाल रहे होते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर आप एंजॉय कर रहे होते हैं अपने मेहमानों के साथ, तो एंजॉय भी कर रहे होंगे और नेकी की नेकी मिल रही होगी। तो इसी तरीके से इंसान अपने हर अमल को इबादत बना सकता है, आखिरत के सवाब का बाइस बना सकता है। तो मेहमान की मेहमानी पर खर्च करना या उलमा व सुलहा की खिदमत करना वगैरह, क्योंकि उलमा व सुलहा जो होते हैं वो अल्लाह ताला के औलिया होते हैं, ठीक है, यानी जो दीन इलाही शरीयत की खिदमत कर रहे हैं, यानी उसको महफूज कर रहे हैं और उसको फिर आगे की नस्लों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये उलमा व सुलहा लोग होते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला के खुसूसी पसंदीदा बंदे होते हैं, ठीक है। इनको इनकी इज्जत करने के लिए, इनकी कदर अपने दिल में पैदा करने के लिए इस तरह से इंसान को सोचना चाहिए कि देखें अल्लाह ताला ने मुझे किसी काम के लिए पसंद किया कि मैं जो हूँ वो जैसे इंजीनियर हूँ तो मैं जो हूँ वो मशीनों की खिदमत कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डॉक्टर है तो वो इंसानी जिस्म की खिदमत कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इंसानी जिस्म की खिदमत कर रहा है, लेकिन बहरहाल इंसानी जिस्म ही है जो कि मिट्टी में मिलकर के खत्म हो जाएगा। कोई जो है वो दर्जी है तो वो कपड़े की खिदमत कर रहा है, कोई लोहार है तो लोहे की खिदमत कर रहा है, कोई बढ़ई है तो वो लकड़ी की खिदमत कर रहा है, कोई कुछ है कोई कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो उलमा और सुलहा हैं इनको अल्लाह ताला ने अपने कुरान की खिदमत के लिए पसंद किया, ठीक है, अपने नबी अलैहिस्सलाम सलाम की सुन्नतों की खिदमत के लिए पसंद किया ना, क्योंकि ये सुन्नतों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद रखते हैं और उसके बाद फिर आगे लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये जो पसंद है ये कोई अपनी तरफ से तो नहीं कर सकता ना, इसको अल्लाह ही की तरफ मंसूब करना होगा ना। तो अल्लाह ताला ने जब किसी को इस काम के लिए पसंद किया है तो उसकी क्या अल्लाह ताला की निगाह में कोई कदर नहीं होगी? जिस तरह अल्लाह की निगाह में अपने कुरान की कदर है कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है ना गालबन, इसका मफहूम यह है कि मेरे कुरान को किसी आम किताब के ऊपर, किसी दूसरी किताब के ऊपर इतनी फजीलत हासिल है कि जितनी मुझे किसी इंसान के ऊपर फजीलत हासिल है, अपनी मखलूक के ऊपर फजीलत हासिल है, ठीक है। तो अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान कोई फर्क नहीं है क्या? कितना फर्क है, यानी हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। खालिक खालिक है और मखलूक मखलूक है, दोनों के दरमियान कोई मुनासिबत हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुरान और कुरान से मुतअल्लिक जितने भी उलूम हैं, ठीक है, तफसीर है, किरत है, हदीस है जो कि कुरान की तफसीर है, राइट, और इस कुरान को नाज को लेकर के आने वाले की जिंदगी की 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 सुन्नतें हैं, सीरत है, राइट, ये सारे के सारे उलूम कुरान के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो बाकी उलूम जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री और जितने भी सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट वगैरह सब कुछ दुनिया के अंदर होते हैं तो वो तो मखलूक की हैसियत रखते हैं ना, और कुरान जो है ये तो खालिक का कलाम है, तो इन दोनों के दरमियान तो कोई मुनासबत हो ही नहीं सकती। तो भाई बिल्कुल इसी तरीके से जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने कलाम की खिदमत के लिए पसंद किया है तो उनमें और उन लोगों में जिनको अल्लाह ताला ने मखलूक की किसी दूसरी चीज के लिए पसंद किया तो उन दोनों में तो कोई फर्क नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से इस वाली जो ये जो एस्पेक्ट है ना, इस एस्पेक्ट को जो है वो कम अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर देंगे ना तो नुकसान किसी का नहीं होगा सिवाय हमारा अपना, ठीक है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूजात में से कौल किसी ने नकल किया था कि उन्होंने फरमाया था कि लोगों अगर तुम लोग उलमा सुलहा की खिदमत नहीं करोगे ना तो ना करो, ठीक है ना, मत करो, डोंट वरी, ठीक है, तुम अगर खिदमत नहीं करोगे ना करो, तो जब तुम अगर खिदमत ही करोगे ना तो फिर क्या होगा कि हम लोग जो है ना फिर जाहिर है अपना पेट पालना है ये तो फर्ज है, ठीक है ना, अपने बच्चों का पेट पालना है ये तो फर्ज है, ठीक है, तो अब उसके लिए जो है ना हम कुछ और कर लेंगे फिर, ठीक ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن کے اوپر جو ہم وقت لگاتے ہیں, حدیث کے اوپر جو ہم وقت لگاتے ہیں نا, دینی علوم کے اوپر جو ہم وقت لگاتے ہیں نا, اب 24 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہمارے پاس وقت. ہمارے پاس بھی کوئی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس طرح تمہارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس 24 گھنٹے میں سے اگر ہمیں وقت دینا پڑے گا پیٹ پالنے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کر لیں گے کوئی چھابڑی کر لیں گے, دکان لگا لیں گے, ٹھیلا لگا لیں گے. اس لیے کہ الحمدللہ یہ جو علماء صلاح ہوتے ہیں نا, یہ اس چکر میں تو پڑے ہی نہیں ہوتے کہ جب تک وائٹ کالر جاب نہیں ہوگی تو پھر تو جاب ہو ہی نہیں سکتی, رائٹ. کہ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو ہے نا اسٹیٹس سمبل, کہ ڈاکٹر ہوگا تو عزت ہوگی اور ڈاکٹر نہیں ہوگا تو عزت نہیں ہوگی, رائٹ. انجینئر کی عزت ہوتی ہے اور فلانے کی عزت ہوتی ہے, فلانے کی عزت ہوتی ہے, یہ چکر تو علماء نے تو پالے ہی نہیں ہوتے, رائٹ. ان کی نظر میں تو ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی, تو وہ پھر کچھ بھی کر لیں گے, دکان لگا دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ ہم میں سے چاول کی دکان لگا لے گا, رائٹ. کوئی ہم میں سے جو ہے نا وہ سبزی کا کام کرنا شروع کر دے گا, سبزی وبزی بیچنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے. تو ہم تو اس طریقے سے اپنے رزق کا پھر کوئی اور بندوبست کر لیں گے, قرآن اور حدیث کی خدمت پر چھوڑنی پڑ جائے گی کیونکہ مجبوری ہے, اور مجبوری کے اندر تو چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ دکان وکان لگا لیں گے تو ہمارا تو کام چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن پھر تم جو ہے نا وہ اپنے اور اپنے اولاد کی ایمان کی خیر منانا, 50 سال کے بعد تمہاری اولادیں جو ہے نا وہ یا تو یہودی بن چکی ہوں گی, یا نصرانی بن چکی ہوں گی, یا آریہ بن چکی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, یا آج کے زمانے میں اگر ہوں گی تو وہ دہریہ بن چکی ہوں گی, ٹھیک ہے, ایتھیس بن چکی ہوں گی, کچھ اور ہی قادیانی شادیانی کچھ بن چکی ہوں گی, صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا علماء صلحاء کی جو خدمت ہے نا, یہ ہم احسان نہیں کر رہے ان کے اوپر, یہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو, ٹھیک ہے. یہ فقط جو ہے نا وہ اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں, اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. ان کو آپ کی محتاجی نہیں ہے, یہ آپ کے ویسے بھی غلام نہیں ہوتے, یہ آپ کے ویسے بھی نوکر نہیں ہوتے, آپ کے امپلائیز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ان کو تنخواہ دینی ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے امپلائیز ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کے رزق کا انتظام کروا دیں گے جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. لیکن جو عوام الناس اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے, اپنے علماء کے انتظام نہیں کرتے نا, ان کو پھر دین سے محروم کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ آگے چل کر کے نا ان کی نسلیں جو ہیں وہ پھر مسلمان اسلام کے اوپر قائم نہیں رہتی ہیں. اس طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے, اور حقیقت یہی ہے, 100% نہیں بلکہ 200% یہی حقیقت ہے. تو فرمایا کہ عکس کے اپنے اقارب و اعزا کو کچھ دینا, یا مہمان کی مہمانی پر خرچ کرنا, یا علماء و صلحاء کی خدمت کرنا وغیرہ. بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے مالی واجبات انسان پر عائد ہوتے ہیں, یعنی زکوٰۃ کے واحد کی تھوڑی یہ واجب, جیسے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی واجب ہے نا. ماں باپ کو کوئی حکومت, یہ کوئی ویسٹرن کنٹریز ہیں کہ جنہوں نے آپ کو فارغ کر دیا ہے ماں باپ کی خدمت سے اپنے اولڈ ہومز بنا کر کے, رائٹ. تو یہ تو ہمارے دین اسلام میں ایسا کوئی گنجائش نہیں ہے, ماں باپ کو اٹھا کر کے آپ اولڈ ہوم کے اندر ڈال دیں. تو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے, بیوی کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے. اب آپ لوگ تو خوشی ہو رہی ہوں گی ظاہر ہے, لیکن یہ واجب ہے. اور اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کے لیے دعا کریں, یعنی اپنے شوہروں کے لیے اگر ان کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کے لیے دعا کریں, اور اگر کوشش کر سکتی ہیں تو ان کو بھی مشائخ سے جوڑنے کی کوشش کریں, تاکہ مشائخ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بیوی کو بھی نفقہ دینا ہوتا ہے, اور نفقے کے یعنی صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا دینا ہوتا ہے اور جو کوئی چیز چاہیے تو وہ خرید کے دے دی, بلکہ اس کے اوپر بھی بیوی کو بھی دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر, اگر مد حضرات جو ہے مشائخ کے ساتھ جڑیں گے تو. تو بیوی کا بھی نفقہ جو ہے وہ واجب ہے, اولاد کا نفقہ واجبہ یا دوسری واجبات شرعیہ. تو آت و زکا میں ادائے زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد دوسرے واجبات کا ذکر اقرب اللہ سے کر دیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو 2.5% والی زکوٰۃ ہوتی ہے, فرض والی زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ, تو وہ آت و زکا میں کور ہو گئی, اور اقرب اللہ کے اندر دوسرے واجبات کور ہو گئے. آگے, وما تقدموا لانفسكم من خير, تو ما تقدموا لانفسكم, اس میں تقدموا لکھ دیا انہوں نے تو وہ ٹائپنگ مسٹیک ہی کرائی, کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک کام اپنی زندگی میں کر گزرو وہ بہتر ہے. خیر کا لفظ جو ہے وہ نیک کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, और कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन का मतलब आगे भेजना। तो ये जो तुम आगे खैर का काम भेज रहे हो ना, लि अनफुसिकुम, वो अपने नफ्स के लिए भेज रहे हो, अपने नफूस के लिए भेज रहे हो, ठीक है, यानी ये तुम्हारे अपने फायदे का काम है जो कि तुम कर रहे हो। तो वो यानी जो नेक काम अपनी जिंदगी में तुम कर गुजरो वो बेहतर है इससे कि मरने के वक्त वसीयत करो। इसमें माली इबादत, सदका व खैरात भी दाखिल है और नमाज रोजा वगैरह भी जो किसी के जिम्मे कज़ा हो, अपने हाथ से अपने सामने अल्लाह की राह में खर्च करके उससे सुबुकदोशी बेहतर है। बाद में तो वारिसों के इख्तियार में बात रहती है वो करें या ना करें। ठीक है, ये विरासत के मामला जो हैं ये उमूमी तौर पर हमें बिल्कुल नहीं पता होते कि वसीयत क्या चीज़ होती है और विरासत क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम शायद दोनों को एक ही समझते हैं या क्या समझते हैं पता नहीं। तो जब इंसान मरता है तो उसके मरने के बाद जो कुछ उसने छोड़ा होता है, ठीक है, उसको उसका विरसा कह तो देते हैं, ठीक है, कि भाई ये इसने विरसा छोड़ा है, ये इसने अपना तरका छोड़ा है, लेकिन उस तरके के अंदर से जो 1/3 होता है उसके अंदर वो वसीयत करके जा सकता है। वो ये कह सकता है मरने से पहले कि जी मेरा जितना माल असबाब है तो वो यहाँ 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 पड़ा हुआ है, फलाने बैंक अकाउंट के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है, फलाने बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है, उस बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे नाम पर ये जमीन है और मेरे नाम पर वो घर है और मेरे नाम पर ये गाड़ी है और ठीक है ये मेरी मिल्कियत में गाड़ी है और ये मेरी मिल्कियत में मकान है, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो वसीयत के अंदर, सॉरी वसीयत नामा उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी चाहिए। ठीक है, कि मेरी कुल जो असासा है ना, कुल जो मेरा मेरा मेरी ओनरशिप है वो ये चीज़ें हैं, इसी को कहते हैं वसीयत लिखना। ठीक है, कि अपने कुल असासे आप लिख दें। उसके बाद दूसरी चीज आप क्या लिखते हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या कर्जे हैं, राइट, जो कि मैंने अभी तक अदा नहीं किए हैं, वो भी इस वसीयतनामे के अंदर लिख देना। सही है, तो कर्जे इंसान के ऊपर क्या क्या होते हैं, एक तो वो कर्जे होते हैं जो कि इंसान ने इंसानों से लिए हुए होते हैं, ठीक है, तो वो आप मेंशन करते हैं अपने वसीयतनामे के अंदर कि भाई फलाने शख्स से मैंने इतना कर्जा लिया हुआ है। ओके, और दूसरा कर्जा क्या होता है, वो जो कि अल्लाह ताला ने फर्ज किया होता है, ठीक है ना, फर्ज जो होता है वो कर्ज होता है, ये बात हो चुकी है पहले, तो जो अल्लाह ताला ने फर्ज किया हुआ है वो मैंने जो अदा नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी लिख देना कि भाई मेरे मेरे जिम्मे जो है वो इतनी सारी नमाजें मैंने नहीं पढ़ी हैं, तो ये भी मेरे ऊपर कर्जा है, तो उस नमाज की तादाद भी जो है वो वसीयतनामे के अंदर लिख देना। ठीक है, तो इस तरह की सारी डिटेल्स जो हैं वो वसीयतनामे के अंदर लिख दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अब ये यही आपकी वसीयत हो गई, नहीं, बल्कि अब इसके बाद और तफसील है। वो तफसील ये है कि ये जो कुछ आपका कुल असासा है उस कुल असासे में से आपके जितने कर्जे हैं, ठीक है ना, तो उन कर्जों को जो है वो माइनस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो बचेगा ना, तो उस बचे हुए हिस्से में से यानी दो हिस्से किए जाएंगे, ब्लैंक आउट हो रहा हूँ, खैर जिन्होंने सिराजी पढ़ी है वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। दो हिस्से किए जाएंगे ना, एक हिस्सा जो है वो एक्चुअली नहीं सॉरी तीन हिस्से किए जाएंगे। ठीक है, तो 1/3 जो हिस्सा होगा तो उसके लिए तो आप कुछ लिख करके जा सकते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फलाने दोस्त को जो है ना वो इतने पैसे दे दूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा वो यानी जो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो इतने पैसे दे दिए जाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये वसीयत करना कहलाता है। तो ये वसीयत कितने में से जारी होगी, 1/3 ऑफ द लेफ्ट ओवर, यानी कर्जे पे करने के बाद जो बाकी बचेगा, ठीक है, तो उसमें से 1/3 हिस्सा जो है उसमें आपकी ये ख्वाहिशात जारी होंगी। ये जो वसीयत करना है ना ये कहलाएगा ख्वाहिशात जारी करना, कि इतनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में इतना दे दिया जाए, और इतने जो मेरे दोस्त साहब हैं उनको इतना दे दिया जाए, और फलाने जो बस्ती में एक गरीब आदमी है उसको इतना दे दिया जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी जो बच गया ना 2/3, तो उस 2/3 को जो है, यानी 2/3 हिस्सा, उस 2/3 के अंदर से फिर वारिसों को दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो आपके शरी वारिस बनते हैं, सही है। और ये शरी वारिस जो है ये कौन बनते हैं, ये अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया कि कौन बनता है। ठीक है ना, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती, मरने वाले की मर्जी नहीं चलती कि फलाना मेरा वारिस है और फलाना मेरा वारिस नहीं है, उसको मैंने आप कर दिया, राइट, उसको मैं वारिस नहीं मानता। आपके कहने से कुछ नहीं होता, जो अल्लाह ताला ने वारिस डिसाइड कर दिए हैं वही आपके वारिस हैं, उन वारसा को जो है वो 2/3 के अंदर से बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो काम है ना कि जो आपके जिम्मे जो कर्ज है ना, तो उनके बारे में बात हो रही है कि भाई ये सब जो है ना आप अपनी जिंदगी में निपटा दें, ये छोड़ के मत जाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कर्ज अभी आपके सामने बयान किया गया है ना, ये कर्ज दो किस्म के होते हैं ना, एक कर्ज तो होता है इंसानों का कर्ज और दूसरा कर्ज होता है परवरदिगार का कर्ज। ठीक है, इंसानों का जो कर्ज है ना वो तो अदा करना ही करना है। ठीक है, वो तो सबसे पहले अदा कर दिया जाएगा आपके तरके में से। ठीक है, लेकिन जो परवरदिगार का कर्ज है ना, ये अगर 1/3 में बाकी बचा माल तब वो अदा किया जाएगा, अदरवाइज नहीं अदा किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 1/3 माल अभी भी बाकी बचा है कि आपकी नमाज का फिदिया अदा किया जा सके, तब तो अदा किया जाएगा, अदरवाइज नहीं अदा किया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर आपका 1/3 माल अब बाकी बचा ही नहीं, तो फिर वो आपकी नमाज की फिदिये कैसे अदा होंगे। ठीक है ना, वो फिर कैसे अदा होंगे, वो फिर आपके वरसा के ऊपर है। ठीक है ना, आपके वरसा चाहें तो आपकी नमाजों का फिदिया दें, और अगर वो ना चाहें या बेचारों के पास इतनी तंग दस्ती है कि वो चाह करके भी नहीं दे सकते, पैसे ही नहीं है उनके पास, इतने कम पैसे हैं, ठीक है, तो फिर वो कैसे देंगे आपकी नमाजों का फिदिया। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई ये काम आप अपनी जिंदगी में करके जाएं, जिंदगी में। ठीक है, ये आप जो है ना वो ये जो सदका खैरात वगैरह है और नमाज रोजा वगैरह जो भी आपके जिम्मे कजा है ना, तो इसका फिदिया जो है ना वो अपने हाथ से करके जाएं, छोड़ करके मत जाएं। ठीक है, लेकिन ये सारी तफसीलात जो है ना, ये तो ना तो किसी को पता होती हैं, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस वक्त उसके समझ में भी नहीं आ रही होती है सारी बात। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं ना, ये होश हवास के अंदर ये समझने की बातें होती हैं। ठीक है, होश हवास बल्कि जवानी, ये सारी बातें जवानी के सीखने की होती हैं, जवानी में करने की होती हैं। ठीक है, जब आप जवानी में इन चीज़ों को अपने अपने लिए अहम बना लेते हैं ना, तब जो है ना फिर बुढ़ापे के अंदर आप ये काम कर पाते हैं। और अगर जवानी आपने लगा दी दूसरे कामों के अंदर, इन बातों को ना आपने सीखा ना इन बातों को आपने इम्पोर्टेंट बनाया, ठीक है, बल्कि लगे रहे आप अपने सियासत के अंदर या खेल कूद के अंदर, ठीक है, तो फिर तो आखिरी वक्त में तो ये बातें वैसे ही समझ में नहीं आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये पहले करने के काम होते हैं। बहरहाल हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया कि तुम में ऐसा कौन है जो अपने वारिस के माल से बनिस्बत अपने माल के ज्यादा मोहब्बत रखता हो। ठीक है, यानी बेटे के पास जो है वो 10 लाख रुपए हैं और आपके पास जो है वो 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो, यानी आपकी निगाहें किस माल पे होनी चाहिए, क्या बेटे के माल पे होनी चाहिए या अपने माल पे होनी चाहिए। ठीक है, अपने माल पे होनी चाहिए ना, अपने माल से आपको एक ताल्लुक होता है कि भाई मैं इस माल को जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, बेटे के माल के ऊपर तो आप का ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, यानी बेटे का माल आपका माल तो नहीं है ना, वो तो एक अलग मिल्कियत है, बेटे की मिल्कियत है। तो नबी रसूल ने फरमाया कि तुम में से ऐसा कौन है जो कि वारिस के माल, जैसे बेटा बेटे के माल से अपने माल के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत रखता हो। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, मोहब्बत रखने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा वाली मोहब्बत वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही, बल्कि बात ये हो रही है कि यानी जिसको कि तुम अपना माल समझते हो, क्या वारिस के माल को अपना माल समझते हो कि अपने माल को अपना माल समझते हो, ये यहाँ पे मुराद है। ठीक है, मोहब्बत रखने से यहाँ पर ये मुराद है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि हमें कोई भी ऐसा नहीं जो अपने वारिस के माल की मोहब्बत खुद अपने माल से ज्यादा रखे। ठीक है, यानी कोई भी हमें ऐसा बेवकूफ नहीं है जो कि अपने माल को अपना माल समझने के बजाय अपने वारिस के माल को अपना माल समझे। इस बात को अगर आप लिख लें ताकि ये जो मोहब्बत वाला लफ्ज है ना, ये फिर बाद में आपको कंफ्यूज ना करें, ठीक है, कि जो अपने माल को अपना माल समझने की बजाय अपने वारिस के माल को अपना माल समझे, हमें तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो साहबा ने ये जवाब दिया, आप सरसर ने फरमाया सोच समझ कर बात करो, ठीक है, क्या वाकई ऐसा है कि तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, ठीक है। तो साहबा ने अर्ज किया कि हमें तो इसके सिवा कोई दूसरी दूसरी सूरत मालूम नहीं, यानी हम तो किसी होश और अकल, होश और अकल रखने वाले इंसान को नहीं तसव्वुर कर सकते कि वो अपने पास जो माल है उसकी बजाय किसी दूसरे के माल को अपना माल समझना शुरू कर दे, ठीक है। तो आप ने फरमाया कि जब ये बात तुम समझ लो कि तुम्हारा माल वो है, यानी आप ने फरमाया कि जब ये बात क्लियर हो गई ना कि हाँ भाई जो तुम्हारा माल है ना वही तुम इस्तेमाल कर सकते हो, वही तुम्हारे काम आएगा, दूसरे का माल तुम्हारे काम नहीं आएगा, चाहे वो तुम्हारा वारिस क्यों ना हो, उसका माल तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारा माल तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। जब ये बात क्लियर हो गई ना, ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है उसका ये मतलब है कि जब ये बात क्लियर हो गई ना तो अब सुन लो, तुम्हारा माल वो है जो तुमने अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, ठीक है, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, और जो रह गया यानी जो बाकी बच गया और तुम मर गए, वो तुम्हारा माल नहीं है बल्कि तुम्हारे वारिस का माल है, ठीक है। उस माल के ऊपर से तुम्हारी ओनरशिप खत्म हो गई, अब तुम्हारे वारिस की ओनरशिप बन चुकी है, ठीक है। ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई है ना, तो उम्मीद है कि अपने माल और अपने खर्च करने के बारे में तो आपको बात समझ में आती होगी कि क्या क्या हो रही है, या किसी को नहीं समझ में आई तो वो पूछ ले, किसी ने प्राइवेटली एक मैसेज लिखा भी है उसको भी मैं पढ़ लूँ पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ अटर्नी इज ओके और नॉट मीन्स ये इस्लामिकली ओके है कि वी गिव ऑल पावर टू वन पर्सन एंड ही डिसाइड्स व्हेन और व्हाट टू डू अबाउट प्रॉपर्टी, नहीं ये ओके नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी जो है ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। इस लीगल डॉक्यूमेंट को अगर आप इस्लामी शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करें तब ठीक है, ठीक है। लेकिन आप जो सूरत हाल लिख रही हैं ना, यानी आप जो सूरत लिख रही हैं कि वो बंदा डिसाइड करे कि किसको कितना और कब देना है, ये इस्लामी शरीयत में जायज नहीं है, ठीक है, ये जायज नहीं है, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स एक्चुअली आप ये कह रही हैं कि एक बंदा जो है वो अपना माल जो है ना वो पूरा का पूरा किसी दूसरे के सुपुर्द कर दे, ठीक है ना, उसको पावर दे दे, उसको अथॉरिटी दे दे, अब वो बंदा जो है ना वो जिसको चाहे दे। तो एक्चुअली जो है ना, ये इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। यानी ये ऐसा है कि आप जो है वो, यानी मरने मरने की बात तो छोड़े ना, ठीक है, आप जो है ना वो किसी को अपना पूरा बैंक अकाउंट, जिसके अंदर माशाल्लाह आपके डायमंड रिंग्स भी पड़ी हुई हैं और आपके जो है वो खजाने पड़े हुए हैं, आप जो है ना किसी दूसरे बंदे के नाम वो बैंक अकाउंट कर दें और अपना नाम उस बैंक अकाउंट से हटा लें, और फिर उस बंदे से कहें कि जी मैं चाहता हूं कि आप जो है ना वो फलाने शख्स को इतना दे दिएगा, उतना इतने दे दिएगा, उसको इतना दे दिएगा, ठीक है। तो अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है कि आपने तो उसको बैंक अकाउंट का ओनर बना दिया, अपना नाम उधर से हटा लिया, ठीक है, अब आप उससे तवक्को ये रख रही हैं कि जी वो उसको दे उसको दे उसको दे, वो क्यों देगा भाई, राइट। वो तो आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से आपके और अपने, यानी जो आपने माल उसको बेसिकली आपने हदिया ही कर दिया ना उसको सारा का सारा माल, ठीक है, तो वो ये काम क्यों करेगा। नहीं, ये जो पावर है ना, आपने जो लिखा है ना कि नो आफ्टर फादर डेथ वन सन एल्डर वन डिसाइड्स एज वी गेव हिम पावर बिकॉज ही इज ओल्डर, नहीं, ही डज नॉट डिसाइड, ही कैन नॉट डिसाइड। ये जो पावर ऑफ अटर्नी है ना, ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो शख्स जो है वो सिर्फ लीगली जो है वो बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सके, ठीक है, एक्सेस कर सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो यानी एक्सेस करने नहीं देगी किसी और को, क्योंकि जिसका वो बैंक अकाउंट है वो बंदा तो मर गया, ठीक है, अब जो है वो कोई और जो जब तक उसके लीगल हेयर्स जो है ना, जिसको कहते हैं लीगल हेयर्स, HEIRS, ठीक है, तो लीगल हेयर्स जो है ना, या एयर्स एक्चुअली इसको शायद प्रोनाउंस किया जाता है, तो वो लीगल हेयर्स के दरमियान वो सारी की सारी चीज जो होती है ना वो डिवाइड होती है, ठीक है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए पावर ऑफ अटर्नी लोग लिख देते हैं कि भाई इसके पास जो है ना वो पावर है कि वो इस बैंक अकाउंट में तसर्रुफ कर सकता है, कि वो इसमें से जो है ना वो मनी विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन बस विड्रॉ की हद तक है ये पावर ऑफ अटर्नी, कि वो उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। उस बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं, सारे वरसा को इस बात का पता होना चाहिए कि कितने पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि उन पैसों को जो है वो अल्लाह ताला की बनाए हुए शरीय उसूलों के मुताबिक लोगों के अंदर तकसीम किया जाए, ठीक है ना। ये बड़े भाई की सवाबदीदी पर मुनहसर नहीं है कि वो कितना चाहे किसी को कितना दे, ठीक है। उसने तो बस एग्जीक्यूटर बनना है। इस बंदे को जो है ना, जो पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है ना, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटर बनना, जिसको के वकील बनना कहा जाता है शरीयत के अंदर। ये बंदा सिर्फ वकील है, जस्ट टू एग्जीक्यूट द विल एंड जस्ट टू एग्जीक्यूट और जस्ट टू फैसिलिटेट विरासत, ठीक है। इससे ज्यादा ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसने इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल विरासत को तकसीम करना है, और जितना शरीयत ने मिकदार रखी रखी है जिस वारिस के लिए, उतना ही देना है। ये टाइम और अमाउंट को डिटरमिन नहीं कर सकता, ठीक है ना। टाइम है एज सून एज पॉसिबल, और अमाउंट कितनी है, जितनी अल्लाह ताला ने मुकद्दर ने मुकर्रर कर दी है, ठीक है। तो पावर ऑफ अटर्नी का मतलब जो है ना, वो सिर्फ एक लीगल एग्जीक्यूटर के तौर पर होता है, और इससे ज्यादा वो टाइम का डिसीशन इस बंदे के पास नहीं होता, और अमाउंट का भी डिसीशन इस बंदे के पास नहीं होता है। अच्छा, डिस इनहेरिट इज इट अलाउड इन हम इन इस्लाम? आप कर देना जिसको कहते हैं ना, नहीं आप नहीं किया जा सकता, जो लीगल एयर्स हैं उनको आप नहीं कर सकते। अगर कोई अपनी मर्जी से अपने माल की वसीयत कर दे और साथ ये कह दे कि मेरी वसीयत को जो बदलेगा वो गुनाहगार होगा, अब क्या किया जाए? ये क्या है, इनका नाम खुदा तो नहीं है कहीं, जो ये साहब इस तरह की बात कर रहे हैं? इनका नाम क्या है, खुदा? वही गुनाहगार जो है वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला होता है कि वो अब्बा हुजूर की नाफरमानी करने वाला होता है? अगर अब्बा हुजूर जो है वो कोई ऐसा हुक्म दे जाए जो कि अल्लाह के हुक्म से टकराता हो, तो फिर बंदा कैसे गुनाहगार होगा? तो अब्बा हुजूर जो है वो अगर वसीयत शरीयत के खिलाफ कर जाएंगे ना, तो उनकी वसीयत को यानी क्या कहते हैं वो, डस्टबिन के अंदर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। उनकी वसीयत की कोई हैसियत नहीं है और उन कोई भी गुनाहगार नहीं होगा। वसीयत जो है वो अल्लाह ताला ने 1/3 के अंदर रखी है, उस 1/3 से ज्यादा जो है वो उस वसीयत को नहीं कर सकते। हाँ, जो 1/3 के अंदर वो वसीयत लिख करके गए, ठीक है ना, उसको जो बदलेगा तो वो तो भाई यानी क्यों बदल रहा है भाई, जब पैसे भी मौजूद हैं, ठीक है, और यानी अब्बा ने जो है वसीयत भी की थी, तो अब क्यों बदल रहे हैं? तो अब भी अगर वो बदल रहे हैं तो फिर वो गुनाहगार होंगे, बाप की नाफरमानी करने के वाले, ठीक है। लेकिन अब्बा हुजूर ने वसीयत ही जो है वो गलत करी थी, तो फिर कोई गुनाहगार नहीं होता, ठीक है। शरीयत के किसी ने लिखा था कि इज पाकिस्तानी लॉज, आर पाकिस्तानी लॉज सेम एज इस्लामिक लॉज? अगर होता तो फिर बात ही क्या थी। मौलवी साहब भी जो है वो आराम से बैठता अपना काम करते हैं, लेकिन मौलाना साहब को जो है वो सड़कों में निकलना क्यों पड़ता है? क्योंकि ऐसा नहीं होना, हमारे यहाँ तो ब्रिटिश लॉ चल रही है ना, ठीक है। या ये जो चंद लोग जो है वो गधे घोड़े के वोट्स लेकर के सारे, अरे जैसे भी वोट पड़ रहे हो, जिसके भी वोट पड़ रहे हो, वो आ जाते हैं हुकूमत के अंदर, फिर वो बैठ करके जो है वो लॉ मेकर बन जाते हैं, ठीक है ना, लॉ बनाने वाले, नाउज बिल्ला क्या कहेंगे, शारिया बन जाते हैं, लॉ बनाने वाले बन जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर आकर, ठीक है। तो अब ये इस्लामिक लॉज कैसे हो सकती है? इस्लामिक लॉज तो मौलवियों की बनाई हुई लॉ होती है ना, एक सीधी सी बात है भाई, अल्लाह की तो ना आवाज़ आती है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने देखा है, तो फिर क्यों, कहाँ से आती है इस्लामिक लॉज? ये तो मौलवियों की तरफ से आती है ना, और हमारे मुल्क में तो मौलवी ये काम नहीं कर रहे होते, तो फिर ये इस्लामिक लॉज कैसे हो सकती है, ठीक है। परेशान हो गए कुछ लोग ये बातें सुन देखे, नहीं ऐसे ही है, क्योंकि जो इस्लामिक शरीयत है वो कुरान हदीस इजमा और कयास, ठीक है, ये है ना उसकी, तो फिर ये कुरान हदीस में क्या लिखा हुआ है ये कौन बताएगा? ये आपके जावेद अहमद गामदी साहब बताएंगे है? या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब बताएंगे, या अमेरिका वाले बताएंगे आपको? ये मौलाना साहब नहीं बताएंगे ना सारी बातें कि कुरान में क्या है, क्या 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 है, मतलब फिर क्या चीज़ होती है, और ठीक है ना। तो सादा सी बात है कि मौलवी साहब तो अगर हुकूमत में होंगे तभी वही सारी बातें इस्लामिक होंगी, वरना तो नहीं हो सकते इस्लामिक। शरीयत के मीरास के उसूल मुख्तलिफ हैं और मुल्की कानून मुख्तलिफ, इस सूरत में क्या किया जाए? अगर आपने मुल्क के सदर साहब को या पार्लियामेंट को मनने के बाद जवाब देना है तो फिर आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को फॉलो कर लें, अगर आपने अल्लाह को जवाब देना है तो फिर आप मौलवी साहब के बनाए हुए कानून को फॉलो कर लें, ठीक है ना। फैसला हमारा अपना है कि किसको जवाब देना है। शादी शुदा सिस्टर्स का भी नान नफका वाजिब है कि नहीं? शादीशुदा सिस्टर्स अगर वो अपने हस्बैंड के साथ हैं और तलाक याफ्ता नहीं हैं तो हस्बैंड के जिम्मे होते हैं ना, ठीक है। बाकी तो यानी देखिए, जो तलाक याफ्ता फिर बहनें होती हैं वो फिर जब वापस आ जाती हैं ना, या उनके शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो जो है वो भाइयों की जिम्मेदारी बन गई ना, तो फिर तो वो भाई ने शरी तौर पर कफालत करनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर बाप हैं तो बाप ने शरी कफालत करनी होती है, अगर वो कर सकता है तो, ठीक है। वरना कफालत जो है वो शौहर की जिम्मेदारी होती है, शौहर मर जाए या शौहर तलाक दे दे तो फिर बाप की जिम्मेदारी होती है, फिर बाप भी अगर ना कर सके या उसका इंतकाल हो जाए तो फिर भाई की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। औरत का कमाना जो है ना, ये तो आखिरी दर्जे में जा करके जायज़ होता है, जब कोई उसके लिए प्रोवाइड करने वाला ना हो, ठीक है ना, तब वो खुद से कमा करके खाएगी, वरना तो ये सारे के सारे जो है ना रिश्तेदार मर्द हजरात ये पकड़े जाएंगे फिर अल्लाह के यहाँ, आपने क्यों नहीं करी थी। अगर कोई अपना हिस्से को माफ कर दे तो जायज होगा? ये जो माफी वाला मामला है ना विरासत के अंदर, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है, ठीक है। तो इसके अंदर ना वो सारी तफसील आती है कि तीबे नफ्स के साथ माफ किया है या तीबे कल्ब के साथ माफ किया है, और ये वाली तफसील जो है वो आपके साथ अभी पढ़ी नहीं है वो सूरह निसा के अंदर, ठीक है। लेकिन निसा को हम वाली सूरत नहीं पढ़ा रहे, बल्कि हम जो हजरात हैं उनको सूरह निसा की तफसीर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको तो हक उन्होंने देना है ना, ठीक है ना। और दीन इस्लाम जो है वो हक देने की तलकीन करता है, हक देने के ऊपर एम्फसाइज करता है, इस वजह से अल्लाह की तौफीक से हम सूरह निसा जो है ना वो मर्दों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को हक मिल जाए, सही है। हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आप जो है वो यानी हंगामा खड़ा ना करें कि मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे दीन ने सिखाया ही नहीं है कि अपने हक के लिए हंगामा खड़ा करना शुरू कर दो, ठीक है। तो सूरह निसा की तफसीर में आप देखेंगे ना तो वहाँ पर तीब नफ्स और तीब कल्ब की बहस आई हुई है। तो ये जो मेहर माफ़ करना, ये मेहर की ये शुरू की शायद चौथी या पांचवी आयत है, मेहर की वाली जो आयत है, तो मेहर माफ़ करने के अंदर है कि भाई तीब नफ्स के साथ मेहर माफ़ करेंगे तो माफ़ होगा, वरना माफ़ नहीं होगा। तो वो तो मेहर की बात है, मेहर में तो फिर तीब नफ्स पॉसिबल होता है, राइट। लेकिन विरासत के अंदर, क्योंकि विरासत एक ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है ना, एक पूरा घर है उसके अंदर तकसीम हो रही है, बहनों का भी हिस्सा बन रहा है, भाई का भी हिस्सा बन रहा है, जमीनें हैं उसके अंदर बहनों का हिस्सा भाई का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो तीब नफ्स जो है ना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये माफ करवाने वाले चक्कर जो होते हैं ना ये सही नहीं होते, ठीक है। तो ना तो वो बहन माफ़ कर रही होती है और जो करवाने वाला होता है ना वो भी कोई प्यार मोहब्बत से माफ़ नहीं करवा रहा होता, बल्कि वो सारे के सारे धौंस धमकियाँ और इस किस्म की हरकतें चल रही होती हैं, तो इसलिए इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सारे तकाजे पूरे कर लिए आपने कि माफ़ी जो है वो जेन्युइन माफ़ी है, ठीक है, तो फिर जो है वो जाहिर है जब किसी ने अपना हक अपना उठा करके किसी को दे दिया। अच्छा, इसके भी तरीका लिखा है कि माफी कौन सी वाली जायज समझी जाएगी, ये वो वाली माफी जायज समझी जाएगी कि आप बहन के हवाले कर दें, ठीक है, उसके बाद फिर वो आपको दे, यानी उसको आप कंप्लीट ओनरशिप दे दें कि वो उस माल में बगैर किसी आपके आपके खौफ के या आपके जो है वो यानी असर के वो आसानी के साथ उसमें तसरुफ कर सके, ठीक है। ये होती है कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर, जब कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बहन के पास, अब वो बहन भाई को दे दे वो माल, ठीक है, तो फिर वो उसके अंदर तीबे नफ्स माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि जी वो तुम बस माफ कर दो और है ना, वो भाई जो है वो आपस में माल यानी बांट लिया करेंगे वगैरह वगैरह, तो ये सारी हरकतें सही नहीं होती। अगर अपनी कुछ चीज गिफ्ट कर, गिफ्ट के तौर पर अपने किसी एक बच्चे को अपनी जिंदगी में ही दे दी जाए तो ये सही है। देखिए, गिफ्ट के तौर पर आप किसी एक बच्चे को अपनी जिंदगी में तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ना, वो आपका माल है, अभी अभी आप मरे नहीं है ना, तो वो आपका माल है, ठीक है, तो आप अपने माल को सारा का सारा उठा के ईडी ट्रस्ट को दे दें, ठीक है ना, या आप अपने किसी एक बच्चे को दे दें, तो दे तो सकते हैं और ये जायज होगा, इसको यानी तस्लीम किया जाएगा, इसके अंदर कोई वो नहीं है, ना तस्लीम करने वाली तो बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने से यानी डिस्करेज किया गया है कि बच्चों के दरमियान जो है ना वो इक्वालिटी रखो हर लिहाज से, यानी हदीये के लिहाज से भी इक्वालिटी रखो, बातचीत के लिहाज से भी इक्वालिटी रखो, किसी एक की तारीफ कर रहे हो तो दूसरों की भी उसके यानी अगर लोगों के सामने उसकी तारीफ कर रहे हो ना तो दूसरे बच्चों को पता चल रहा है कि मेरे इस भाई या किसी बहन की तारीफ हो रही है, तो अब सबको जो है ना वो इक्वल रखो, ठीक है, वरना फिर है ना वो नफरतें पैदा होती हैं, उनके आपस में भी अदावतें पैदा होंगी और आपके खिलाफ भी अदावत पैदा होगी। तो अगर करना ही है ना इस किस्म का गिफ्ट वाला मामला तो बताने की जरूरत नहीं है फिर हर एक, ठीक है ना, ये काम जो है ना फिर ये छुपा के करने चाहिए, ठीक है ना, इसके अंदर ही खैर है, ठीक है। तो आप लोगों को बताएं नहीं, आप अगर उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरतमंद समझते हैं, कोई इसका मसला चल रहा है या जो भी है, तो आप हर चीज़ डिस्क्लोज करनी ज़रूरी होती है ना, बिल्कुल डिस्क्लोज न करें इसको, बताएं ना अपने दूसरे बच्चों को, ना कर सकते, ठीक है। और कुछ चीज़ सर, मैं 10 मिनट भी ऊपर हो चुके हैं, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।